ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल द्वारा जबरन लापता किए गए लोगों की जांच, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग संबंधी तृतीय संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण विधेयक का अमेरिका बेलायत सहित विभिन्न 10 देशों ने किया स्वागत। सरकार द्वारा गोरखा की गंडकी गांव पालिका के कुछ वार्डों में किसानों के स्वास्थ्य में पाए गए समस्या का अध्ययन करने के लिए समिति का गठन। बांके में हुई बस दुर्घटना में हुई 3 लोगों की मौत और ईरान में एक और बड़ा हादसा, गैस लीक होने से 2 लोगों की मौत, 10 घायल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने जबरन गुम किए गए व्यक्तियों की जांच, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग संबंधी तृतीय संशोधन विधेयक 2081 का प्रमाणीकरण किया है। राष्ट्रपति पौड़ेल ने संघीय संसद के दोनों ही सदनों की बैठक से पारित होकर पेश होने के लिए तैयार विधेयक संविधान की धारा 113 की उपधारा 2 के मुताबिक प्रमाणीकरण किया। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराई द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लिखित है। कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री अजय कुमार चौरसिया ने कहा कि संक्रमणकालीन न्याय संबंधी कानून पीड़ित मैत्री बनाया गया है। जबरन गुम किए गए व्यक्ति की जांच आयोग द्वारा बलपूर्वक गुम किए गए पीड़ितों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री चौरसिया ने कहा कि संक्रमणकालीन न्याय संबंधी कानून पीड़ितों को न्याय देने के हिसाब से है। महान्यायाधिवक्ता रमेश बढ़ाल ने संक्रमणकालीन न्याय को निष्कर्ष पर पहुंचाकर पीड़ितों को सकभर जल्द न्याय दिलाने पर जोर दिया। मौके पर पीड़ितों ने अपने अपने गुम हुए परिवार के सदस्य इतने सालों तक संपर्क में नहीं आने के बाद की कित लाश या श्वास खोजने के लिए राज्य से अनुरोध किया था। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में हवाई दुर्घटनाओं से एयरलाइंस और हवाई यातायात के उद्योगों की छवि एवं विश्वसनीयता पर भी असर पड़ने, तत्काल सुधार पर जोर देने का कोई विकल्प न होने की बात बताते हुए इसमें सुधार के लिए विशेष कार्य योजना के साथ काम करने की ओर सांसदों ने सरकार का ध्यानाकर्षण कराया। इससे पूर्व प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री विद्या भट्टराय ने कहा कि तीनों तहों की सरकारों के बीच समन्वय होने के बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा स्थापित किया जा सकता है। प्राविधिक शिक्षा को प्राथमिकता देने, नर्सिंग शिक्षा को व्यवस्थित करने की तैयारी होने की बात उल्लेख करते हुए शिक्षा मंत्री भट्टराय ने कहा कि मेडिकल शिक्षा में कोटा बढ़ाने के विषय में विचार विमर्श चल रहा है। इससे पूर्व प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सांसदों ने देश के विभिन्न समसामयिक विषयों पर सरकार का ध्यानाकर्षण कराया। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक ने नेपाल कानून व्यवसायी परिषद द्वितीय संशोधन विधेयक 2081 के प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। बैठक में कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री अजय कुमार चौरसिया द्वारा प्रस्तुत नेपाल कानून व्यवसायी परिषद द्वितीय संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। इसी तरह सभा की आज की बैठक में विद्यान व्यवस्थापन समिति का वार्षिक प्रतिवेदन समिति के सभापति जयंती देवी राय ने सभा समक्ष पेश किया। इससे पहले बैठक में युवाओं को रोजगार देकर और नेपाल में रहने का माहौल बनाकर युवा नीति लागू करने पर जोर देते हुए सांसदों ने बाढ़ से हुई क्षति को कम करने के लिए पूर्व तैयारी के लिए भूवैज्ञानिकों द्वारा भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और मिट्टी का अध्ययन कराने का सरकार से अनुरोध किया। इसी तरह विभिन्न समसामयिक विषयों पर सांसदों ने सरकार का ध्यानाकर्षण कराया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक भाद्र 18 गते मंगलवार दोपहर 1:15 बजे के लिए बुलाई गई है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
बाजू दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ हजुर।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जननेता मदन कुमार भण्डारीकै अर्धकदकी प्रतिमाका अनावरण किया है। ललितपुरकै च्यासल स्थित पार्टी मुख्यालयमै निर्माण की गई प्रतिमाका आज अनावरण किया है। बता दे कि अनावरण कार्यक्रममै पार्टीकै शीर्ष नेतागणकी सहभागिता थी। नेपाल के संघीय संसद के दोनों सदनों से सर्वसम्मत रूप में गुम किए गए व्यक्तियों की जांच सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग आईन 2071 संशोधन विधेयक का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने स्वागत किया है। विधेयक को संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, नॉर्वे, जापान, फिनलैंड, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी और फ्रांस ने स्वागत किया है। गृहमंत्री रमेश लेखक ने पर्व त्योहार को लक्षित कर कृत्रिम अभाव, कालाबाजारी, मूल्य वृद्धि और गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण नियंत्रण करने का निर्देश किया है। पर्व त्योहार को लक्षित कर सहज आपूर्ति व्यवस्थापन और प्रभावकारी बाजार अनुगमन संबंधी विषय पर सरकार वालों के साथ विचार विमर्श में गृहमंत्री लेखक ने कहा कि पर्व त्योहार के समय में दैनिक उपभोग्य के सामग्री को सहज और सरल पहुँच होना चाहिए। कृत्रिम अभाव दिखाने की बात किसी भी हालात में सह्य नहीं किया जाएगा, ये बताते हुए गृहमंत्री लेखक ने दशहरा दीपावली के समय रातोंरात होने वाले मोल वृद्धि को सूक्ष्म तरीका से देख करके नियंत्रण करने का निर्देश किया। बांके में हुए बस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। दांग घोराही के 30 वर्षीय बिमल राय की नेपालगंज मेडिकल कॉलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुर में, दांग तुलसीपुर में 60 वर्षीय मान बहादुर ओली और तुलसीपुर के ही 24 वर्षीय संतोष भोसाल की भेरी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय बांके के प्रवक्ता एवं DSP नारायण डांगी ने दी। बता दें कि हादसे में घायल हुए 26 घायलों का इलाज नेपालगंज और कोहलपुर में हो रही है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुबा गुरुंग ने कहा कि नेपाल की प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अन्य देशों की तुलना में खुली और उदार है। आज अंतर्राष्ट्रीय समाचार समिति के साथ बातचीत में मंत्री गुरुंग ने कहा कि नेपाल में प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मजबूत है, जिसने बहुलवादी खुले समाज को अपनाया है, जो अंतर्राष्ट्रीय समाचार मीडिया की स्थिति को दर्शाता है। कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी ने गोरखा की गंडकी गांव पालिका के कुछ वार्डों में किसानों के स्वास्थ्य में दिखे समस्या का अध्ययन करने के लिए 5 सदस्यों वाली समिति का गठन किया है। बता दें कि कुछ दिनों से गंडकी गांव पालिका में कुछ वार्डों में तरकारी खेती में अधिक विषादी का इस्तेमाल करने से किसानों का समस्या में स्वास्थ्य में समस्या होने की खबर सामने आने के बाद मंत्री अधिकारी ने वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत मनोज पोखरेल के संयोजकत्व में 5 सदस्यीय कार्यदल का गठन किया है। बता दें कि गंडकी गांव पालिका के 61 तरकारी किसानों में कैंसर और 15 लोगों का किडनी फेल होने की खबर मीडिया में आई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान से बड़े हादसे की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि गैस लीक होने के कारण ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड केंद्र में 2 लोगों की मौत हो गई और अन्य 10 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लीक इस्फहान प्रांत में गार्डों की एक वर्कशॉप में हुआ और घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्फहान प्रांतीय गार्ड ने मृतकों की पहचान कैप्टन मुज्तबा नजारी और लेफ्टिनेंट कर्नल मुख्तार नोरसेदी के रूप में की गई है। गार्ड के बयान में यह नहीं बताया गया कि क्या दोनों वरिष्ठ अधिकारियों की मौत गैस से दम घुटने से हुई या गैस रिसाव के कारण विस्फोट हुआ। इसमें यह नहीं बताया गया कि लोग कैसे घायल हुए या कोई अन्य डिटेल नहीं दिया गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31 से सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जबरन लापता किए गए लोगों की जांच, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग संबंधी तृतीय संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण विधेयक का अमेरिका बेलायत सहित विभिन्न 10 देशों ने किया स्वागत। सरकार द्वारा गोरखा की गंडकी गांव पालिका के कुछ वार्डों में किसानों के स्वास्थ्य में पाए गए समस्या का अध्ययन करने के लिए समिति का गठन, बांके में हुई बस दुर्घटना में हुई 3 लोगों की मौत और ईरान में एक और बड़ा हादसा, गैस लीक होने से 2 की मौत, 10 घायल। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।